एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने दुनिया भर के पाठकों को सच में सोचने पर मजबूर किया है।
हाँ, यान माजल का मशहूर उपन्यास लाइफ ऑफ पाई।
बिल्कुल, ये 2001 में आया और आते ही मतलब छा गया। इसे 2002 में मैन बुकर पुरस्कार भी मिला।
हाँ, और इसके लेखक यान मार्टिल, उनकी पृष्ठभूमि भी काफी दिलचस्प है। स्पेन में जन्मे कनाडाई लेखक हैं।
हाँ, उनके माता पिता राजनयिक थे, तो बचपन कई देशों में बीता। वो बहु सांस्कृतिक अनुभव उनके लेखन में साफ दिखता है ना?
बिल्कुल, पहचान, विश्वास, यथार्थ की धारणा, ये सब चीजें बार बार आती हैं।
और लाइफ ऑफ पाई ये कोई सीधी साधी कहानी तो है नहीं?
अरे बिल्कुल नहीं, इसमें एडवेंचर है, सर्वाइवल है, एक लड़के के बड़े होने की कहानी है जिसे बिल्डिंग्स रोमान कहते हैं,
और कहीं कहीं तो ये किसी धार्मिक ग्रंथ जैसा एहसास देती है।
और वो जादुई यथार्थवाद,
हाँ, मैजिकल रियलिज्म,
जहाँ पता ही नहीं चलता कि क्या सच है और क्या मतलब कल्पना।
सही, इसने समकालीन साहित्य में आध्यात्मिकता और विश्वास जैसे विषयों पर एक नई बहस शुरू की।
तो आज का हमारा इरादा है इसी अनोखी कहानी की गहराइयों में उतरना।
हाँ, हम पाई पटेल के सफर, उसके उस अविश्वसनीय समुद्री संघर्ष और उन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे जो ये उपन्यास हमारे सामने रखता है।
चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले पड़ाव से, पौंडीचेरी, भारत। यहाँ हम मिलते हैं पिसिन मोलिटर पटेल से।
पिसिन मोलिटर पेरिस के एक स्विमिंग पूल के नाम पर।
हाँ, लेकिन स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाते थे तो उसने खुद ही अपना नाम रख लिया पाई, वो गणित वाला पाई।
अच्छा, काफी क्रिएटिव।
और उसका परिवार, वो जू चलाते थे ना?
हाँ, एक चिड़ियाघर। और पाई वो बचपन से ही बहुत मतलब जिज्ञासु किस्म का लड़का था और आध्यात्मिक झुकाव वाला भी। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि वो एक साथ हिंदू, ईसाई और इस्लाम, तीनों धर्मों को मानता था।
बिल्कुल, उसका बस एक ही तर्क था, मैं सिर्फ ईश्वर से प्रेम करना चाहता हूँ।
कितनी मासूमियत है इस बात में। उसके परिवार का रवैया कैसा था इस पर? वो तो धर्मनिरपेक्ष थे शायद।
हाँ, काफी हद तक, लेकिन उसके धार्मिक गुरु जरूर कंफ्यूज हो जाते थे।
जाहिर है। अच्छा, पाई के चरित्र पर और किसका असर पड़ा? उसके पिता?
हाँ, संतोष पटेल, वो पक्के यथार्थवादी थे। जू के मालिक होने के नाते उन्होंने पाई को जानवरों की असलियत का एक बहुत कठोर पाठ पढ़ाया था।
वो बाघ और बकरी वाला वाक्य?
हाँ, वही कि देखो जानवर दोस्त नहीं होते। ये सबक क्रूर जरूर था पर
आगे चलकर जीवन बचाने वाला साबित हुआ।
और दूसरी तरफ उसकी माँ थी गीता पटेल, वो पाई की अध्यात्मिक खोज को ज्यादा समझती थी, ज्यादा स्वीकार करती थी।
और वो दो मिस्टर कुमार, वो भी तो थे।
हाँ हाँ, एक सूफी फकीर मिस्टर सतीश कुमार
और दूसरे नास्तिक जीव विज्ञान के टीचर मिस्टर सतीश कुमार।
क्या कमाल का विरोधाभास था, एक ईश्वर का रहस्य बताता है, दूसरा तर्क और विज्ञान सिखाता है।
और यही चीज मतलब ये विज्ञान और अध्यात्म का द्वंद्व पाई के लिए जरूरी बन जाता है।
हाँ बिल्कुल, ये दोनों ही दृष्टिकोण उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बनते हैं और बाद में उस भयानक सफर में यही उसे जिंदा रहने में मदद करते हैं। ये एक तरह की तैयारी थी अनजाने में।
लेकिन पौंडीचेरी की दुनिया बदल जाती है, परिवार कनाडा जाने का फैसला करता है।
हाँ, भारत में उस वक्त राजनीतिक हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, उन्हें भविष्य अनिश्चित था,
तो उन्होंने अपना चिड़ियाघर बेचा और कुछ जानवरों के साथ एक जापानी जहाज पर सवार हो गए।
तित्सिमसुम।
हाँ, तित्सिमसुम। और यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है, पौंडीचेरी पीछे छूट जाता है और सामने होता है
प्रशांत महासागर।
अथाह, बेरहम प्रशांत महासागर। और सफर के दौरान ही वो भयानक हादसा होता है, जहाज डूब जाता है एक भयानक तूफान में। क्यों डूबा, कैसे डूबा, ये रहस्य ही रहता है।
हाँ, बस चारों तरफ अफरा तफरी, अंधेरा, पानी, और इसी बीच कोई पाई को एक लाइफ बोट पर फेंक देता है।
और जब उसे होश आता है वो अकेला इंसान है जो बचा है, कम से कम उस नाव पर तो।
हाँ, लेकिन वो अकेला नहीं है, नाव पर और भी है। एक जेब्रा है जिसकी टांग टूटी हुई है, एक मादा औरंगुटान है, ऑरेंज जूस जो शायद तैरकर नाव तक पहुंची, एक बेहद शातिर और खूंखार लकड़बग्घा,
और
तिरपाल के नीचे छिपा हुआ एक 450 पाउंड का रॉयल बंगाल टाइगर रिचर्ड पाकर।
बाप रे, ये तो किसी दुस्वप्न जैसा है, एक छोटी सी नाव पर इतने सारे जानवर और एक बाघ।
बिल्कुल, और नाव तुरंत ही एक छोटे से जंगल में बदल जाती है जहां बस एक ही नियम चलता है, जिंदा रहने का नियम।
प्रकृति की खाद्य श्रृंखला का वो भयानक नजारा।
हाँ, वो लकड़बग्घा वो शायद सबसे ज्यादा डरा हुआ और भूखा था। वो पहले उस घायल जेब्रा को मारता है
धीरे धीरे,
हाँ बहुत क्रूरता से। फिर वो ऑरेंज जूस पर हमला करता है। वो बेचारी लड़ने की कोशिश करती है पर मारी जाती है।
और पाई ये सब देख रहा है
असहाय
दहशत में।
ये सिर्फ जानवरों की मौत नहीं थी, ये उसके अपने संसार का, उसकी मासूमियत का अंत था।
और तभी रिचर्ड पार्कर सामने आता है।
हाँ, जो अब तक छिपा था। वो अचानक लकड़बग्घे पर झपड़ता है और एक पल में उसे खत्म कर देता है।
तो अब नाव पर सिर्फ दो, पाई और रिचर्ड पार्कर,
एक डरा हुआ लड़का और एक विशाल भूखा बाघ। और यहीं से शुरू होती है वो 227 दिनों की अविश्वसनीय यात्रा।
227 दिन, कल्पना करना भी मुश्किल है। शुरुआत में तो पाई का मकसद सिर्फ बचना रहा होगा रिचर्ड पार्कर से।
बिल्कुल, वो नाव से बंधी रस्सियों और कुछ सामान से एक छोटा सा बेड़ा, मतलब एक राफ्ट बनाता है और ज्यादातर वक्त उसी पर रहता है,
बाघ से दूर।
हाँ, फिर वो धीरे धीरे जीने का सामान जुटाता है, बारिश का पानी इकट्ठा करना, थोड़ा बहुत जो राशन था उसे चलाना,
और मछली पकड़ना सीखता है अपने शाकाहारी होने के सिद्धांत को तोड़कर।
हाँ, ये पहला बड़ा समझौता था जीने की इच्छा और आदर्शों के बीच।
लेकिन सिर्फ छिपकर या बचकर तो वो जिंदा नहीं रह सकता था, उसे कुछ और करना था।
सही, वो समझ गया कि उसे नाव पर अपना हक जताना होगा या कम से कम बाघ के साथ कोई समझौता करना होगा।
तो उसने रिचर्ड पार्कर को वश में करने का फैसला किया। ये तो बहुत हिम्मत का काम था,
बहुत ज्यादा। और यहाँ उसके पिता की वो सीख काम आई, जानवरों के मनोविज्ञान वाली।
हाँ, वो सीटी का इस्तेमाल करता है, नाव को हिलाकर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है।
और सबसे जरूरी, वो रिचर्ड पार्कर के लिए खाना और पानी जुटाने वाला बन जाता है, मछलियां पकड़ता है।
तो ये कोई सर्कस वाला वश में करना नहीं था, ये एक तरह का नाजुक संतुलन था।
हाँ, एक सह अस्तित्व जो डर, जरूरत और एक दूसरे पर निर्भरता पर टिका था।
ये सफर सिर्फ शारीरिक मुश्किलों का नहीं था, भूख, प्यास, तूफान।
हाँ, वो तो था ही, लेकिन अकेलापन, अपने परिवार को खोने का गम, हर पल मौत का डर, ये मानसिक यंत्रणा भी बहुत भयानक रही होगी।
लेकिन कहानी में कुछ सुंदरता के पल भी आते हैं ना?
हाँ बिल्कुल, वो रात में चमकने वाले शैवाल बायोल्यूमिनेसेंस, जैसे समुद्र तारों का सागर बन गया हो। कभी वेल का पास से गुजरना, कभी उड़ने वाली मछलियों का झुंड जो अचानक भोजन का जरिया बन जाता है।
ये पल शायद उसे टूटने से बचाते होंगे, याद दिलाते होंगे कि इस क्रूरता में भी कहीं कोई आश्चर्य है।
हाँ, शायद उसकी आस्था को जिलाए रखते होंगे। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो यथार्थ और भ्रम के बीच की रेखा को मिटा देती हैं।
जैसे वो अंधे फ्रांसीसी व्यक्ति वाली घटना।
हाँ, जब पाई भूख प्यास से लगभग अंधा हो चुका है, उसे एक और लाइफ बोट दिखती है जिस पर एक और अंधा आदमी है।
उनकी बातचीत भी बड़ी अजीब होती है।
और फिर वो आदमी पाई की नाव पर आने की कोशिश करता है, शायद नरभक्षण के इरादे से,
और रिचर्ड पार्कर उसे मार डालता है।
ये इतना भयानक है कि पाई बाद में खुद शक करता है कि ये सच था भी या नहीं।
और फिर वो रहस्यमय द्वीप।
हाँ, वो तैरता हुआ मांसाहारी द्वीप, शैवाल से बना हुआ,
हजारों मीरकैट्स, मीठे पानी के तालाब, खाने लायक शैवाल, ये तो स्वर्ग जैसा लगता है शुरू में।
बिल्कुल, पाई और रिचर्ड पार्कर को वहां थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर रात में
द्वीप का असली चेहरा सामने आता है। वो तालाब एसिडिक हो जाते हैं
और पाई को एक पेड़ के फल में इंसान का दांत मिलता है।
बाप रे,
वो समझ जाता है कि ये द्वीप एक पेज है, एक खूबसूरत जाल जो आराम तो देता है पर धीरे धीरे तुम्हें खा जाता है।
जीवन का रूपक, आसान रास्ते अक्सर खतरनाक होते हैं।
हाँ, वो फौरन वहां से निकल जाता है।
पाई और रिचर्ड पार्कर का रिश्ता, ये इस कहानी का दिल है।
है तो, बहुत जटिल रिश्ता है, डर भी है, निर्भरता भी। रिचर्ड पार्कर शिकारी भी है, रक्षक भी।
क्या रिचर्ड पार्कर पाई के अंदर की पाशविक वृत्ति का प्रतीक है, वो जंगली हिस्सा जिसे जिंदा रहने के लिए जगाना पड़ा?
हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ प्रतीक नहीं है, वो पाई को जिंदा रखता है, उसे सतर्क रखता है, उसे निराशा में डूबने से बचाता है।
पाई खुद कहता है ना कि रिचर्ड पार्कर ने ही उसे शांति और उद्देश्य दिया।
हाँ, वही जिसने मुझे डराया, उसी ने मुझे शांति, उद्देश्य और समग्रता दी। तो रिचर्ड पार्कर है क्या असल में?
क्या वो सचमुच का बाघ है, या पाई की कल्पना, या फिर कहानी का ही प्रतीक, वो कहानी जिसे हम चुनते हैं?
उपन्यास इसका सीधा जवाब नहीं देता, और शायद यही इसकी खूबी है। खैर, 227 दिनों के बाद आखिरकार वो नाव मैक्सिको के तट पर पहुंचती है, तोमातलान।
पाई लगभग बेहोश है और रिचर्ड पार्कर
वो नाव से उतरता है, जंगल के किनारे पर एक पल देखता है और फिर बिना पीछे मुड़े जंगल में गायब हो जाता है,
बिना अलविदा कहे।
हाँ, और ये बात पाई को बहुत दुख देती है। वो कहता है, अलविदा कहने का एक क्षण न मिल पाना यही सबसे ज्यादा दर्द देता है।
उसे बचा लिया जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है और फिर वो जापानी अधिकारी आते हैं।
हाँ, मिस्टर ओकामोटो और मिस्टर चिबा, जहाज डूबने की जांच करने।
पाई उन्हें अपनी कहानी सुनाता है, जानवरों वाली कहानी।
वो सुनते तो हैं पर उन्हें यकीन नहीं आता। बाघ, तैरते केले, मांसाहारी द्वीप, ये सब अविश्वसनीय लगता है।
तो वो कहते हैं कि उन्हें असली कहानी सुनाओ, बिना जानवरों वाली।
हाँ, एक तर्कसंगत कहानी।
और तब पाई उन्हें दूसरी कहानी सुनाता है,
छोटी, क्रूर और दिल दहला देने वाली।
इस कहानी में जानवर नहीं है, इंसान है। पाई, उसकी माँ, एक घायल नाविक और जहाज का रसोइया।
और इस कहानी में रसोइया शैतान का रूप ले लेता है। वो पहले नाविक की टांग काटता है चारा बनाने के लिए, फिर उसे मारकर खा जाता है।
और फिर
वो पाई की माँ को भी मार डालता है।
हाँ, एक झगड़े के बाद।
और उन्हें शार्कों को खिला देता है।
ये सुनकर पाई आपा खो देता है।
वो रसोइये पर हमला करता है, उसे मार डालता है और फिर
जिंदा रहने के लिए वो भी वही करता है जो रसोइये ने किया था, नरभक्षण।
कितनी भयानक कहानी है ये।
और ये सुनाने के बाद पाए उन अधिकारियों से वो सवाल पूछता है,
तो आप कौन सी कहानी पसंद करते हैं, कौन सी कहानी बेहतर है,
जानवरों वाली या इंसानों वाली?
अधिकारी चुप हो जाते हैं, क्या कहें वो।
आखिर में वो चुनते हैं।
हाँ, मिस्टर ओकामो तो कहते हैं कि जानवरों वाली कहानी ही बेहतर कहानी है।
और पाई कहता है, और ईश्वर के साथ भी ऐसा ही है।
और उनकी फाइनल रिपोर्ट में जानवरों वाली कहानी ही लिखी जाती है।
यहीं पर उपन्यास अपने मुख्य विषयों पर आता है। पहला तो यही सच की प्रकृति, कहानी कहने की ताकत।
हाँ, क्या तथ्यात्मक सच ही हमेशा बेहतर होता है, या वो कहानी ज्यादा जरूरी है जो हमें जीने का मतलब दे, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत दे।
कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो जीने के लिए जरूरी है, वो हमें सदमों से उभार सकती हैं।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है आस्था और तर्क का सवाल। पाई या तीनों धर्मों को मानना, फिर समुद्र में उसकी आस्था की परीक्षा।
उपन्यास अज्ञता मात पर भी टिप्पणी करता है ना, जिसे पाई कहता है स्थिरता को परिवहन का साधन चुनना।
हाँ, मतलब अनिश्चितता में टिके रहना पर किसी गहरे अर्थ की तलाश छोड़ देना। उपन्यास कहता है कि जीने के लिए विश्वास की छलांग जरूरी है, कोई कहानी चुननी पड़ती है,
चाहे वो ईश्वर की हो या रिचर्ड पार्कर की।
यह आपको ईश्वर में विश्वास करने को मजबूर नहीं करता, पर पूछता है कि क्या बिना विश्वास के जीना मुमकिन है।
तीसरा विषय इंसानियत बनाम पशुता, हमारे अंदर का द्वंद्व।
रिचर्ड पार्कर वो अंदर का जानवर, लेकिन कहानी ये नहीं कहती कि उसे मारो, कहती है उसे समझो, संभालो, उसके साथ जीना सीखो, खासकर मुश्किल वक्त में।
और उसका अंत में चले जाना शायद ये दिखाता है कि जब सभ्यता लौटती है तो उस जंगली हिस्से की जरूरत कम हो जाती है, वो वापस छिप जाता है।
और जाहिर है जीने की इच्छा शक्ति, इंसान की वो अदम्य इच्छा जो उसे शाकाहार जैसे सिद्धांत छोड़ने पर मजबूर कर देती है।
जिंदा रहने की कीमत चुकानी पड़ती है, शारीरिक भी, मानसिक भी।
और आखिर में व्यवस्था बनाम अराजकता, समुद्र की अराजकता के सामने पाई का नियम बनाना, दिनचर्या बनाना, प्रार्थना करना।
ये दिखाता है कि इंसान कैसे पैटर्न और रस्मों से अर्थ और नियंत्रण ढूंढते हैं, भले ही वो भ्रम हो।
उपन्यास की शैली भी कमाल की है, वो फ्रेमिंग नैरेटिव, काल्पनिक लेखक का होना।
हाँ, और पाई का फर्स्ट पर्सन नैरेटिव हमें सीधे उसके अनुभव से जोड़ता है।
जानवरों का इंसानों के रूपक की तरह इस्तेमाल, प्रतीकात्मक। रिचर्ड पार्कर, नारंगी रंग, वो द्वीप,
और वो जादुई यथार्थवाद जो लगातार हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या सच है, क्या संभव है।
सच में लाइफ ऑफ पाई सिर्फ एक एडवेंचर कहानी नहीं है।
नहीं, ये हमें हमारी अपनी जिंदगी, हमारे विश्वासों, हमारी कहानियों पर सोचने को मजबूर करती है।
शायद ये याद दिलाती है कि जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करने के लिए हमें कल्पना और एक बेहतर कहानी की उतनी ही जरूरत है जितनी हवा पानी की।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।